व्यवस्था विवरण अध्याय सात। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिबी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यनाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। व्यवस्था विवरण 7:1-9 पद। हमने यहां व्यवस्था को नहीं दोहराया क्योंकि हम उसे निर्गमन के अध्ययन में देख चुके थे। व्यवस्था में लिखा है कि जो परमेश्वर से घृणा करते हैं परमेश्वर उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी को दंड देता है, परंतु यहां वो कहता है कि वे जो उसकी विधियों को मानते हैं उनकी हजारों पीढ़ियों को वो दया दिखाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये कि हम परमेश्वर की वाचाओं को निभाएं। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न, नए दाकमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। व्यवस्था विवरण 7:12-13 पद। अतः वे एक विशेष जाति है, आप भी एक विशेष जाति है, अलग किए हुए पवित्र और चुने हुए। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप रूपवान है या आप इतने आकर्षक है, परंतु उसके महान अनुग्रह के कारण उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको चुनना चाहा और उसे अधिकार है कि वो जिसे चाहे चुन ले। ओह, मैं परमेश्वर का कितना आभारी हूं कि उसने मुझे चुना, ये कैसा आनंद है, ये कैसी आशीष है कि उसने मुझे चुना। कुछ लोग परमेश्वर द्वारा चुने जाने से खुश नहीं होते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ संगति रखना चाहते हैं उसे चुन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जिससे संगति रखना चाहता है उसे चुन लेता है। मैं परमेश्वर से उसे इस अधिकार को क्यों छीन लेता हूं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ संगति रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनके तौर तरीके मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। हम में कोई समानता है ही नहीं। मैं धूम्रपान करने वालों की संगति कदापि पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे तंबाकू की गंध बिल्कुल रास नहीं आती है। इसी प्रकार परमेश्वर को भी अधिकार है कि वो अपने साथी को चुने। उसने मुझे चुना, मैं बहुत खुश हूं। अब आप ये कहेंगे कि परमेश्वर को ये अधिकार है कि वह कुछ लोगों को अपनी साथी बनाने के लिए चुने और कुछ को ना चुने। ये तो पक्षपात वाली बात है। ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उसे ये अधिकार है और उसने ये अधिकार दर्शाया भी है। हम कौन है कि परमेश्वर के निष्पक्षता को चुनौती दे? आप शायद ये सोचेंगे कि परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। आपको ये कैसे मालूम? क्योंकि मैं विश्वासी नहीं हूं। आप विश्वासी क्यों नहीं हैं? मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कभी इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई है। क्या आप विश्वासी होना चाहते हैं? नहीं। तब हो सकता है कि उसने आपको नहीं चुना है। आप उसे दोष ना दें। आपने भी तो उसे नहीं चुना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसने किसी का भी परित्याग नहीं किया। वो चुनाव आपके हाथ में छोड़ देता है। उसने कहा, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24 का 15 पद। उसने ये भी कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6 का 37 पद। यदि आपको शक हो कि परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, तो यीशु को ग्रहण कर लो और आपकी शंका का निवारण हो जाएगा और आप वाद विवाद में ना पड़ेंगे। आपको विवाद करने की आवश्यकता ही क्या है? आप कहेंगे, मैं उसे ग्रहण करना नहीं चाहता। ये आपकी समस्या है। इस स्थिति में तो उसने आपको नहीं चुना है। ये आपका दुर्भाग्य है। इसराइल को चुनने में परमेश्वर ने उनकी योग्यता या उनकी निष्ठा को नहीं गिना, परंतु उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया। उसने इब्राहिम के विश्वास के कारण उसे प्रतिज्ञा दी थी कि उसके वंश में से मसीहा का आगमन होगा। उसने ये भी प्रतिज्ञा की थी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 18 का 18। वे अपने पिता इब्राहिम के विश्वास का फल पा रहे हैं। और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न, नए दाक मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। व्यवस्था विवरण 7 13 से 15 पद। यहां परमेश्वर वाचा तो बांध रहा है, परंतु वो शर्तों पर आधारित है। मानोगे, सुनोगे और करोगे। देखिए, निर्गमन और ले व्यवस्था में परमेश्वर स्वास्थ्य संबंधी नियम देता है, क्योंकि अनुचित भोजन करना और परमेश्वर से स्वास्थ्य की याचना करना तर्क संबंधित है। उसने उन्हें खान पान तथा स्वच्छता के नियम दिए और उनसे कहा, यदि तुम इन नियमों को मानोगे और करोगे तो तुम इन रोगों से बचे रहोगे जो मिस्रियों पर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करते हैं। मेरे विचार में अपनी देह को नुकसान पहुंचाना और फिर परमेश्वर से स्वास्थ्य की कामना करना उचित नहीं। उसने हमें बुद्धि दी है कि हम उसके नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियों में मुझसे अधिक है, तो मैं उनको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे ना डरना। जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वो महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। व्यवस्था विवरण 7, 16 से 18 पद, 20 से 22 पद। वो धीरे धीरे इस देश को पूरा अपने अधीन कर लेगा, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझ से हरवा देगा, और जब तक वे सत्यानाश न हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। व्यवस्था विवरण 7 का 23 पद। मूसा चेतावनियों को दोहराता रहता है, क्योंकि यदि वे इस समय प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करने से चूक गए, तो फिर क्या होगा कोई नहीं जानता है। उनके लिए निर्भीक रहना, विश्वास में दृढ़ रहना और संदेश से मुक्त रहना अति महत्वपूर्ण था। उन्हें उस देश पर अधिकार करना अति आवश्यक था। मूसा ने तो भरसक प्रयास किया कि उनके विश्वास को मजबूत बनाए और परमेश्वर पर उनका भरोसा बनाए रखें।